ओम शांति। चाहते हैं क्या व्यर्थ से मुक्ति? सोच के जवाब दो। और भी मैं पूछ सकता हूँ आगे कुछ? सबसे इम्पोर्टेंट चीज किसी भी मनुष्य के जीवन की होती है लक्ष्य। चाहे विद्यार्थी है, बिजनेसमैन है, गृहिणी है, लक्ष्य। क्या लक्ष्य बनाया है हमने अपने इस जीवन का? विचार करेंगे गहराई से, क्योंकि हमारे संकल्प ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। हमारे संकल्प ही हमारे सुखों का, दुखों का, निराशा, आशाओं, सफलता, असफलता, खुशी, गम सबके कारण बनते हैं। है या नहीं? सुखी जीवन चाहिए तो वैसे ही संकल्प कर दें। संकल्प हमारे हाथ में है या किसी और के हाथ में? मैं केवल लेक्चर नहीं देना चाहता, इस पे तो 4 घंटे चाहिए, टॉपिक ही बहुत बड़ा है। सभी विचार करेंगे, संकल्प हमारे हाथ में है या दूसरों के हाथ में? ये बात जिसने समझ ली, अब एक बात ध्यान से सुनेंगे। ध्यान से कह रहा हूं, संकल्प खुद चलते हैं या हम चलाते हैं? नहीं, और कुछ। इसकी गहराई को समझें आप। अगर हम अपने अनुसार सुंदर संकल्प चलाना सीख लें तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। हम चलाएं, मन संकल्प न चलाए, हम चलाएं। समझते हैं ना, आप सभी ज्ञानी हैं। दुनिया में अधिकतर यही हो रहा है कि मन आप ही चल रहा है। हम क्या चलाएंगे? मुरली के संकल्प, खुशी में रहने के संकल्प, ईश्वरीय नशे के संकल्प, बाबा से बातें करने के सुंदर संकल्प, उसने हमें क्या क्या दिया उसके संकल्प। अगर हम ये शुद्ध संकल्प चलाने की आदत डाल दें तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। व्यर्थ को खत्म करना सहज काम तो नहीं है। आप क्या कहेंगे, सहज है? नहीं है सहज। जिस दिन व्यर्थ समाप्त हो जाता है उस दिन आत्मा संपूर्ण बन जाती है, क्योंकि व्यर्थ का विस्तार बहुत ज्यादा है। आज मुझे एक महावाक्य याद आया बाबा का, बहुत दिन के बाद याद आया। देखना और सुनना यही आधार है कंप्लेंट करने का, शिकायत करने का, या कंप्लीट बनने का, संपूर्ण बनने का। हमारे अनेक संकल्पों का बीज हमारा देखना और सुनना ही है। करें चिंतन सभी, ये भगवान के महावाक्य हैं। बहुत पहले आप लोगों ने शायद ही सुने हो, क्योंकि बहुत पहले हैं। मनुष्य क्या देखता है? आंखें तो सारा दिन खुली हैं, और वो देखेंगी ही, बंद आंखें भी देखती हैं। हम क्या देखते हैं सारा दिन? हमने क्या चित्त में समा लिया है अपने दूसरों के लिए, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। 2 व्यक्तियों का झगड़ा है, आप अपने घरों में भी देखो, पड़ोसियों को, रिलेटिव्स को देखो, 2 के बीच झगड़ा हो रहा है। उसका एक बड़ा कारण होता है कि एक ने दूसरे के लिए बहुत गलत गलत बातें चित्त में रख ली हैं। ये ऐसा है, इन्हें ऐसा ही किया, ये ऐसे ऐसे गलत काम करते हैं, तो व्यवहार बदलता है, टकराव होते हैं। हम संकल्प बदल देंगे तो हमारा संसार बदल जाएगा। अच्छी तरह सभी रख लें अपने जीवन में। हम संकल्प बदल देंगे, हमारा संसार बदल जाएगा। कई लोग, अब मैं प्राइवेट बात पर आ जाऊं, कई लोग बाबा के यज्ञ को देखकर भी कहते क्या हो रहा है यहां भी, न जाने कितने संकल्प चलाते हैं। और कई लोग एक ही बाण से सारे संकल्पों को काट देते हैं, कौन सा, जो कुछ हो रहा है वो एक्यूरेट है, यही होना है, खत्म, सारे संकल्प जीरो एक सेकंड में। क्योंकि जहां भी संगठन होगा वहां कुछ ना कुछ तो होगा ना, घर में दो भी होते हैं कुछ ना कुछ होता रहता है, जहां हजारों लोग रहते हैं बड़े कार्य चलते हैं वहां कुछ होता रहेगा। तो हम सभी अब एक सुंदर बात अपने जीवन में आज से अपना लें। ये बात मैंने क्लासेज में 100 बार सुनाई है, आज फिर सुना रहा हूं क्योंकि ये बात भूल जाती है और ये बात है ही बहुत गहरी। हमारा हर संकल्प, एक एक संकल्प जो हम उठाते हैं उससे एनर्जी पैदा होती है, नेगेटिव संकल्पों से नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव से पॉजिटिव, प्योर संकल्पों से प्योर एनर्जी, पावरफुल संकल्पों से पावरफुल एनर्जी। और वो एनर्जी सबसे पहले कहां जाती है, इधर, और ब्रेन को कमजोर करती है। अगर नेगेटिव संकल्प हैं तो ब्रेन को कमजोर करती हैं वो। इसलिए आजकल के युवाओं में, युवकों में मानसिक रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। आप इसको बुरा न समझना, अपने घरों में अपने बच्चों को, छोटे भाई हों आपके, उन्हें आप अगर समझा सकें कि जिस फोन पर वो लगे रहते हैं लंबा समय उसका परिणाम विनाशकारी है, अगर वो समझ जाएं। कब समझेंगे आपकी बात आपके बच्चे, सुनते नहीं ना, अब बताओ, रास्ता निकालो, आपको उन्हें सुधारना है, नहीं तो उनका जीवन खराब। अगर मैं अपना फोन खोलता हूं सवेरे 8 से 9 ही खोलता हूं तो कम से कम 2-3 केस आते हैं मानसिक रोगियों के, वो सब युवक, बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्यों डर लग रहा है, दरवाजा किसने जरा सा नॉक कर दिया, आ गया कोई, ले जाएगा मुझे, मार देगा, डर। और दूसरे केस आएंगे भटकती आत्माओं का प्रकोप। एक अभी अभी प्रयोग हुआ, 4-5 दिन पहले का, एक हफ्ता 10 दिन पहले उसका फोन आया, माता का, कहां की थी मुझे याद नहीं, कि घर की चीजें गुम हो रही हैं, पैसे उठ रहे हैं। अब भूतों को पैसे से क्या करना होगा भाई, किसी को ले जाके देंगे क्या। उसने कई चीजें बताई, ये चीज रखी गुम हो गई, हम सब परेशान रहते, बर्तन गुम हो रहे हैं। मैं समझ के आई ये आत्माओं का काम है। छोटा सा प्रयोग कराया तो परसों उसका फोन आया कि बहुत कुछ ठीक हो गया, अभी कभी कभी उठता है। सिंपल एक प्रयोग मैंने उसको सिखाया, अपने घर में पानी चार्ज करके रोज सवेरे शाम छिड़क देना, इफेक्ट खत्म हो गया। तो ये दो जो समस्याएं हैं दुनिया में बढ़ती जा, आज ये 3 माताओं के फोन आए जो रो ही रही। मैंने कहा क्या हुआ, कि बस मुझे रोना आता है, क्यों आता है मुझे पता नहीं, कभी भी यहां भी आ गया एक का फोन, मैं ऊपर से आया अभी तो उतरते ही फोन मेरा बंद था, वो मैंने किसी को फोन करने के लिए खोला था तो फट से आ गया कि मैं बहुत भयभीत हूं और रोने को मन करता है, मन करता है रो लूं, रोती रहूं। मैंने उससे कुछ कुछ चीजें पूछी, एक बात समझ में आ गई, बताओ क्यों होता होगा। हाँ बोलो, ठीक बोल रहे। मैंने उससे कहा बुरा तो नहीं लगेगा, मैं बता दूं, देखो बुरा लगे तो मैं नहीं बताता, डॉक्टर का काम होता है ये नहीं कह देना कि कैंसर हो गया मर जाओगे अब, ये नहीं कहते डॉक्टर। तो मैंने कहा ये जन्म जन्म के कर्मों का ही खेल है, कर्म सुधारो योग अभ्यास करो 6 साल से ज्ञान में, लेकिन ऐसे में योग लगता नहीं ना। जब पाप बढ़े होते हैं तो योग नहीं लगेगा, व्यर्थ बहुत चलेगा, कहा सेंटर नहीं जा सकते। देखो परिस्थितियां कैसे अब विरोध कर रही हैं मनुष्य का, सेंटर नहीं जा सकते, सेवा नहीं कर सकते। इससे भी तो खुशी होती है ना, माताएं सेंटरों में सेवा करती हैं तो खुशी होती है, बल मिलता है, वो भी नहीं। तो घर में एक ही जगह रहते रहते वही वही संकल्प मन को परेशान करते हैं। इसलिए फिर रिपीट कर रहा हूं, हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है, वो ब्रेन को जाती है। आपके घर में जो युवक हैं, अगर वो बहुत रहते हैं इन चीजों में तो बैड एनर्जी उनके ब्रेन को कमजोर करती जाती है और बहुत जल्दी ये सभी युवक डिप्रेशन में, मानसिक रोगों में आ जाते हैं। तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए कैसे समझाएंगे अपने बच्चों को? बाबा ने सब विधियां बताई हैं, याद करो क्या बताया। अगर खुद स्वमान में रहेंगे और बच्चों को आत्मा देखने की प्रैक्टिस होगी तो आपके बोल में प्रभाव रहेगा, वो सुनेंगे आपकी बात। और अगर आप आदेश देते हैं उन्हें मेरा बच्चा है, तो क्या इफेक्ट होगा? आपका ईगो अहम उनके अहम को बढ़ाएगा, वो सुनेंगे ही नहीं। वो क्या कहेंगे? तुम लोग पापा को क्या पता, पुराने जमाने के आदमी, उद्योग बदल गया, सारी चीजें तो इस लैपटॉप से फोन से हमें मिल रही हैं, इन्हें क्या पता इनका जमाना पूरा हो गया। क्योंकि संसार में हर व्यक्ति अपने को राइट मान रहा है, ये दूसरी बड़ी समस्या है संसार की कि मनुष्य इतना बुद्धिमान हो गया है, निगेटिवली बुद्धिमान, कि वो अपनी हर चीज को राइट मानता है। चोर चोरी भी कर रहा है, आई एम राइट, क्योंकि ये व्यापारी भी तो चोरी कर रहे हैं, तो मैंने की तो क्या हुआ, ये ऑफिसर्स नेताएं भी तो चोरी कर रहे हैं, मैंने की तो क्या हुआ, मैं तो थोड़ी सी कर रहा हूं, सब राइट। घर में दो की लड़ाई हो रही है, दोनों अपने को राइट मान रहे हैं, कोई झुकने को तैयार नहीं। यही तो व्यर्थ संकल्पों के कारण है ना, अब घर में झगड़े होते रहे, सबके व्यर्थ ही चलते हैं, योग नहीं लगता। तो क्या करेंगे सभी? अपने अहम को झुकाना है। मैं तो ऐसे कहूंगा, जो अहम को झुका दे वही बुद्धिमान, जो झुक कर चलना सीख ले वही समझदार है। अहम टकरा रहा है संसार में, ज्ञानियों को इस अहम को पहचान कर छोड़ते चलना है इसको, तो अनेक व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा हो रही है। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं जो बहुत बड़ा रहस्य है, संसार में आप ही उसे समझ सकते हैं, दुनिया के विद्वान बुद्धिमान डॉक्टर साइंटिस्ट नहीं समझ सकते। इस समय सभी के ब्रेन कमजोर हैं। क्यों कमजोर हैं? बोलो। ये रहस्य है बहुत बड़ा इस सृष्टि का। बोलो, मैं आपका चिंतन कराना चाहता हूं। ज्यादा सोच रहे, निगेटिव, उल्टा सुलटा। और बोलो बहने, भय और वायुमंडल। एक राज और है, आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तो आत्मा की जो स्थिति है, जितनी उसकी शक्ति है, जो उसके कर्मों का खेल है, उस सब के वाइब्रेशंस फैलते रहते हैं, उसी से ब्रेन का निर्माण होता है गर्भ में। केवल माँ बाप जिम्मेदार नहीं होते बच्चे के, उसके कर्म, उसकी प्योरिटी, उसके पाप, उसकी शक्तियां, उसके संकल्प, जिस स्थिति में उसने शरीर छोड़ा है, उन संस्कारों के वाइब्रेशंस, ये सब उसके ब्रेन का और शरीर का निर्माण करते हैं। तो कलयुग के अंत में सभी की आत्मा कितनी डिग्री पर पहुंच गई बोलो? लगभग 10 से नीचे नहीं, 80-90 तो सतयुग में थी, 10 से नीचे नीचे। आत्मा की जो डिग्री है, बैटरी है ना, डिस्चार्ज होते होते 10 से नीचे नीचे आ गई। क्लियर है ना ये बात? तो जब वो आत्मा गर्भ में जाएगी तो उसका ब्रेन भी वैसा ही कमजोर बनेगा और समस्याएं ज्यादा, प्रेशर ज्यादा। आपके बच्चों पे कितना प्रेशर है पढ़ाई का, कोई उसको सहन नहीं कर पाते हैं, समस्याएं भी ज्यादा, टेंशन भी ज्यादा, तो ब्रेन बहुतों का सेंसिटिव हो जाता है। मैंने कितने लोगों को देखा जिन्होंने पीएचडी की है या जो कर रहे हैं, उनके चेहरे पर क्या रहता है? अभी भी हमारे पास है एक युवक, मैं उसका चेहरा देखा, मैं, तुम इतने पढ़े लिखे और चेहरा कैसा तुम्हारा? मैं जानता हूं, मैं जानबूझ के पूछ रहा था उससे, क्योंकि ब्रेन की बहुत सारी शक्ति रिसर्च में नष्ट होती है। तो हम सभी को ये ध्यान देना है, अब हमें ब्रेन की शक्तियां बढ़ानी है। ये सब संकल्पों से जुड़ी हुई चीजें हैं। कैसे बढ़ेंगी ब्रेन की शक्तियां? डॉक्टर तो आपको बहुत चीजें सुनाएंगे, आपकी समझ में भी नहीं आएगा, उनकी भाषा मेडिकल होगी। मैं आपको सीधी भाषा में बता रहा हूं, अच्छी नींद, ज्यादा नींद नहीं, कभी सोचो सोते ही रहे, ये बात बाबा ने बताई और गीता में भी लिखी हुई है। वो मनुष्य जो बहुत खाता है या बहुत नहीं खाता, कुछ नहीं खाता, वो मनुष्य जो बहुत सोता है या बिल्कुल नहीं सोता, दोनों ही योगी नहीं बन सकते। जो नहीं सोते नहीं खाते उनका ब्रेन कमजोर हो जाएगा, जो ज्यादा खाते हैं सोते हैं उनका ब्रेन डल हो जाएगा। चलिए, योगियों की नींद और भोजन संतुलित। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम इस तरह व्यर्थ से अपने को बचाएं, क्योंकि जो हमारा लक्ष्य है उस तक भी हम नहीं पहुंच सकते यदि व्यर्थ के हम शिकार रहे तो। और ये व्यर्थ, एक और बात सभी ध्यान रखें, जिसके अंदर जिस तरह का व्यर्थ बढ़ता जाएगा उसे रोकना इम्पॉसिबल होगा। क्यों बोलो, उत्तर दो और उत्तर। आप लोगों ने मुरली शायद नहीं सुनी होगी, वो ये पुरानी मुरलियां हैं। बाबा ने कहा था, एक समय ऐसा आएगा कि माया के पांचों विकार फुल फोर्स से हो जाएंगे संसार में। अब आप सब जानते हैं ज्ञानी आत्माएं हैं, काम वासना अपनी चरम सीमा पर है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर काम वासना के संकल्प चलने लगे वो उसको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि चारों ओर वही आंधी चल रही है, इच्छाएं, लोभ, लोभ ही लोभ है संसार में, स्वार्थ, धन सब कुछ है, संबंध कुछ नहीं है, मरता हो मरने दो भाई, उसका भी लूट लें, चल रहा है या नहीं? माताओं को अच्छा अनुभव होगा इसका, चल रहा है या नहीं बोलो? बुरा नहीं मानना मेरी बातों को, क्योंकि माताएं इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। माताएं चाहें तो शांति हो जाए, मैंने ऐसी माताएं देखी। बड़ा भाई कह रहा है 3 फुट जमीन मेरी है, मैं नहीं दूंगी। वो कि माता बहुत समझ, कहा 4 फुट ले लो, और कुछ कहेंगे अपनी भी दे दो हमें। मैं कहानी सुना देता हूं, सच्ची कहानी नहीं, सच्ची सच्ची बात। मुझे ये बहुत प्रिय लगती हैं ऐसी चीजें, मुझे भी सिखाती हैं ऐसी माताएं, भोली भोली माताएं आई मेरे पास, एक अनुभव सुनाना है। दो भाई हमारे, उसका पति, दो भाई, ये छोटे की, बड़ा भाई तेज तराक, बंटवारा हुआ, उसने बड़ी दुकान ली, बड़ा मकान लिया, इनको थोड़ा थोड़ा दिया। इनके बच्चे बहुत नाराज हुए, थोड़े 14-15 साल के थे। इस माता ने अपने बच्चों को शांत किया, पति तो बेचारा जेंटिल है, ज्ञान में है, बच्चों को शांत किया। एक बात कही सुंदर, वो बाद में बताता हूं। और इनको भाग्य ने ऐसा साथ दिया कि 3 साल तक वो व्यक्ति आया नहीं इनके पास, इनका सब कुछ अच्छा चलने लगा। दुकान जो हल्की सी दी थी वो भरपूर चलने लगी, इन्होंने मकान बनाना शुरू कर दिया दूसरा, बच्चे 3 साल में और बड़े हो गए, पढ़ रहे अच्छे। 3 साल के बाद वो आया, भाई मदद चाहिए मुझे, कर्ज हो गया है। अब इसके बच्चे गर्म हो गए, वो 18-19 साल के हो गए तो गर्म हो गए, इसको निकालो यहाँ से, 3 साल के बाद तो आया है, अभी भी मंगता बन के आया है, हमारा सारा ले लिया। जिनकी माँ थी उसने फिर इनको शांत किया। देखो ऐसी माताएं आप में भी कई होंगी, गर्व करेगा संसार ऐसी माताओं पर, भगवान भी खुश होता है देखकर, कहा नहीं ये हमारे द्वार पर आए हैं ना, हमारे ही तो हैं, दे दो इन्हें जो चाहिए। अपने पति को कहा मदद करो। बच्चे फिर शांत हुए, इसने क्या कहा था पहले, 3 साल पहले अपने बच्चों को इसने कहा था, इन्होंने संपत्ति तो ज्यादा ले ली, हमारे हिस्से में तो स्वयं भगवान है, भाग्य विधाता है, था या नहीं। सभी माताओं को खास कह रहा, डोंट माइंड, भगवान और भाग्य जिन्हें साथ दे रहा हो वो तो रहेंगे सुखी, और जो धन के लालच में दूसरों का भी ले लेंगे वो पाएंगे अति कष्ट। इसलिए देखो ये संकल्प ही तो है ना, अब ये परिवार सुखी है वो कष्ट पा रहे हैं। मैंने कितनों को देखा जिन्होंने दूसरों की संपत्ति ली, माताओं को लालच रहा, नहीं हमारे बच्चे बड़े हैं, तंत्र मंत्र कराए, मरवा दिए बहुतों को, और संपत्ति ज्यादा ले ली, उनके बच्चों ने उनको ही बाहर कर दिया। ये सच्ची घटना है, निकलो यहां से, घर हमारा है, ये कहानी तो रोज की है। इसे माताओं को मैं एक चीज और कहूंगा, फिर क्षमा याचना करता हूं माताओं से, बुरा नहीं मानना, अपनी लड़कियों को अच्छे संस्कार दो, ठीक कहता हूं मैं। अभी अभी की एक घटना, हमारे यंसरोर में एक भाई समर्पित है, उसके परिवार में हुई, उसके मौसी, मौसी और मौसा 10 करोड़ के मालिक, बड़ा बिजनेस किया था, एक ही लड़का, शादी कराई धूमधाम से, बहू आ गई, 1 साल में ही उसने अच्छा नाटक कर दिया, अपने ससुर को समझाया, अब तुम्हारा एक ही तो हम हैं, ये सब हमारे नाम कर दो, ऐसा समझा दिया कि उन्होंने सब कुछ इनके नाम कर दिया। और अगले दिन आ गई दुकान पे, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, ये तो हमारी है, निकलो, घर से भी निकाल दिए। लेकिन इन्होंने समझदारी की थी, एक जमीन अच्छी पड़ी और एक फ्लैट अपने पास रख लिया था, उन्होंने कहा नमस्ते हम चले, सुखी रहेंगे ये, बिल्कुल नहीं, अति कष्टमय जीवन होगा इन्होंने, और जो इन्होंने किया वही इनके साथ होगा, ये भी कर्मों का सिद्धांत है, जो हम दूसरों से करते हैं वही कोई हमारे साथ भी करता है, इससे कोई नहीं बच सकता। तो मैं तो ये देख रहा हूं वो खेल शुरू हो गया है जो बाबा हम सबको बहुत पहले कहा करते थे, अब है बाप का रूप, टीचर का रूप, सदगुरु का रूप, लेकिन एक रूप और शुरू हो जाएगा, वो शुरू हो गया है, सबके पाप कर्मों की सजा मिलने लगी है। इसलिए हमें अपने योग बल को बढ़ाना है, व्यर्थ से बिल्कुल बचना है, धन संपदा के पीछे भटकना नहीं है। मुरली में भी आया ना, आजकल में आया है, ब्रह्मा बाबा ने भी अपने भागीदार को कहा जो लेना हो ले लो, मुझे तो बादशाही मिल रही है। बाबा ने शिक्षा दी, तुम्हें भी संपत्ति के पीछे झगड़े नहीं करने हैं। भाइयों को भी कह रहा हूं, संतोष सबसे बड़ा सुख है, जिनके पास ज्ञान धन बहुत होगा स्थूल धन खिंचाएगा, जिनके पुण्य कर्म बहुत हैं, स्थूल धन की कोई कमी नहीं पड़ेगी। जिन्होंने बाबा को रोज भोग खिलाया है क्या होगा? अब माताएं उत्तर दें, खिलाती है ना, क्या होगा? बहुत मजे का एक संदेश बाबा ने अभी भेजा कहीं, बाबा सारा दिन खाता रहता है, मोटा नहीं होता, खाता तो रहता है ना, कभी कभी भोग लगा रहा। दुनिया में कितने बच्चे तो जिन्होंने बाबा को भोग लगाया है, बाबा उन्हें भोग लगाता रहेगा, खिलाता रहेगा, विनाश काल में कोई कष्ट नहीं होगा। इसलिए अपने संकल्पों को पावरफुल करेंगे, पांच स्वरूपों का अभ्यास। अब संकल्पों की तो लंबी चौड़ी कहानी है, सागर है, एक एक को क्या देखेंगे। कुछ मनोविकारों के कारण व्यर्थ संकल्प हैं, कुछ संबंधों में कड़वाहट के कारण व्यर्थ संकल्प हैं, कुछ स्वार्थ और इच्छाओं के कारण व्यर्थ संकल्प हैं, कुछ समय के कारण व्यर्थ संकल्प हैं। नौकरियां जा रही बहुतों की, आप सबको पता क्या क्या हो गया कोरोना में, धंधे ठप हुए, जो बेचारे रोज काम करने वाले, छोटे जिनके काम हैं, सब घर में बैठे हैं, कर्ज लेके खा रहे हैं, व्यर्थ संकल्प तो चलते हैं। सुसाइडल केस भी बढ़ते जा रहे, जीव घात करने के, मैंने सुनाया क्लास में उस दिन भी, जापान में जितने लोग कोरोना से मरे हैं ना 8 मास में, उससे ज्यादा अक्टूबर में सुसाइड करके मरे हैं, अक्टूबर 1 मास। ये आदत भी संसार में बढ़ती जा रही है। हम सभी अपने को स्ट्रांग करें। मैं आप सभी को एक चीज कहना चाहता हूं, एक ही लाइन है, हार नहीं मानना है। लिख लो, रोज पढ़ लेना, भगवान साथ दे रहा है। बातें बहुत कुछ आने वाली हैं अगले 10 साल। हम अब विश्व परिवर्तन ही कहते हैं, पर विनाश के हैं, आप सब तो जानते हैं, महाविनाश के हैं ये 10 साल। हम न जाने क्या क्या देखेंगे, जो हमने कभी सोचा नहीं, कल्पनाओं से भी परे की चीज है। ऐसे में निसंकल्प रहना। परसों मुरली सुनी है ना 9 तारीख को, हम भी हैरान रह गए, साकार मुरली ऐसी, मामा बोलती थी ऐसे, बाबा ने ऐसी मुरली चलाई संकल्पों पर। ये निसंकल्प स्थिति है, ये व्यर्थ है, संकल्पों का क्या क्या असर होने वाला है। तो हम अपने संकल्पों को ऐसा बनाएं जो किसी भी परिस्थिति में हार न माने। बहुत कुछ होगा, होगा या नहीं? बाबा के शब्द हैं, जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है वो कुछ नहीं दिखाई देगा। तो देख लो, सब कुछ तो आंखों से दिखता है ना। तो हमें ऐसा मजबूत होना है और साथ साथ अपने को तैयार करना है। किस चीज के लिए? अपने कर्तव्य को पहचान लें सभी भाई बहने। बोलो, किस चीज के लिए तैयार करना है अपने को? सबको मदद करने के लिए। स्थूल मदद भी शायद करनी पड़े। अब कोई आपके द्वार पर भूखा ही आ गया तो खाना तो खिलाना पड़ेगा, प्यासा आ गया पानी पिलाना पड़ेगा, दवाइयों के लिए हो सकता है पैसा भी देना पड़े, वो भी हमारा कर्तव्य होगा। लेकिन संसार को सकास देकर बल देना, निर्भय बनाना, उनके दुखों को हरना, एक बहुत बड़ा काम। मैं जानता हूं वो काम सबके बस का नहीं है, पर आपको बता देता हूं, आप में से कोई करे तो। बीमारियां तूफान बनती जा रही हैं, कैंसर, मानसिक रोग तो हैं, कोरोना तो था ही, कैंसर, हार्ट की, दिल की बीमारियां और कई ऐसी चीज आ रही हैं जिनका पता नहीं चल रहा है। अभी भी कहीं पता नहीं महाराष्ट्र में या कहां 210 लोगों को अचानक ऐसी बीमारी हुई जिसका किसी को पता नहीं चल रहा क्या है ये। ऐसी बहुत सारी बीमारियां आएंगी। तो वो बात मैं आपको कह रहा हूं, कोई अगर आप में से करे, एक भी करेगा तो काम सफल हो जाएगा। संदेश सुना देता हूं बाबा का। 1975 सन 75 का ये रक्षाबंधन का बाबा का संदेश है दो लाइनों का। एक समय ऐसा आएगा तुम्हारे सामने बीमार लोगों की भीड़ आएगी और तुम उन्हें दृष्टि दोगे वो सब निरोग हो जाएंगे। लेकिन ये काम वही कर पाएंगे जो संपूर्ण निर्विकारी होंगे। सोच लेना, तो मैं आपको कहा था शुरू में लक्ष्य हमारा क्या है। अगर हमने स्ट्रांगली लक्ष्य बनाया है कि मुझे व्यर्थ से मुक्त होना है, मुझे इस समय ईश्वरीय खजानों से स्वयं को भरपूर करना, ये लक्ष्य, लक्ष्मीनारायण की बात हम नहीं कर रहे, मुझे इस समय सभी ईश्वरीय खजानों से भरपूर होना है, मुझे इस समय जन्म जन्म के लिए सर्वश्रेष्ठ भाग्य बना लेना है, ये लक्ष्य है। मुझे इस समय प्रभु मिलन के सभी सुखद अनुभव कर लेने हैं, जो मौका केवल अब है, इसके बाद कभी नहीं होगा। सोच के देखो, हम ढूंढते आते थे भगवान को द्वापर से, कोई तो ये सोचते थे पता तो लग जाए वो है कौन, कोई ये सोचते थे एक बार उसे देख लें बस हमारी भक्ति सफल हो जाए। कभी सोचा था कि भगवान इस तरह आएगा, किस तरह है? अब ये माताओं से प्रश्न है, किस तरह है? हमारा बन जाएगा, समीप आ जाएगा, हमारी केयर करेगा, माता पिता प्रैक्टिकल में बनकर हमारी संभाल करेगा। पीछे मुरली में शब्द आया है, मैं तुम्हारी बहुत संभाल करता हूँ, बहुत संभाल करता है। कुछ काम उसकी तरफ से ऐसे होते हैं जिसका हमें पता नहीं चलता। जैसे आप सभी लौकिक में माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत सारे काम करते हैं अच्छे अच्छे, बच्चों को पता नहीं चलता, वो तो लड़ेंगे तो कहेंगे तुमने मेरे लिए क्या किया है, कुछ नहीं किया और आपने जान लगा दी। ऐसे ही बाबा भी हमारे लिए बहुत कुछ करता है, संभाल करता है, सुरक्षा करता है। तो सोचा था कभी इस तरह भगवान आ जाएंगे, हम उनसे मिला करेंगे, वो पढ़ाने आ जाएगा हमें, सारे रहस्य सृष्टि के क्लियर हो जाएंगे। इन सब की खोज है शास्त्रों में, विद्वान लगे रहते हैं, संसार का पतन हुआ या उत्थान, प्रकृति सतो से तमो कैसे बन गई, फिर सतो कैसे बनेगी, ये संसार का खेल कैसे चल रहा है, खोज होती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता, बाबा ने हंसते बहलते सहज ज्ञान दे दिया। सबसे सहज ज्ञान क्या दिया? तुम आत्मा हो, ये तो दिया ही, पर इससे भी सहज ज्ञान दिया, तुम आत्माएं कहां से आई हो, इसका ही तो पता नहीं चला था। यही बात भूलने से भगवान को सर्वव्यापी कहा, यही बात भूलने से मुक्ति के लिए प्रयास होते रहे, पर किसी के कुछ समझ में नहीं आया, कहां जाएंगे मुक्त होकर। मैं पिछली क्लास में हंसी का एक बात सुना रहा था, यहाँ 78-79 में मैं बहुत सारे विद्वानों से सन्यासियों से मिला, हरिद्वार ऋषिकेश और आपका सिद्धपुर, तब मैं छोटा ही था। तो एक पंडित गीता का विद्वान, वकील भी था, उसे मैंने पूछा, वकील साहब क्या लक्ष्य है आपका, गीता पढ़ते हो, थोड़ी साधनाएं भी करता था, क्या लक्ष्य है? मुक्ति पाना। कहां जाओगे मुक्ति में? अब वो ऐसा होता है, अगर हमारे वाइब्रेशंस पावरफुल हो तो सामने वाला हमारे उस दायरे में आ जाता है। तो मैंने कहां जाओगे? भगवान के पास। अच्छा, बड़ी खुशी की बात है। मैंने कहा, पर आप तो कहते हो भगवान सब जगह है, फिर उसे छोड़ के कहां जाओगे? अब वो बेचारा वकील था, बुद्धिमान, सोचने लगा, ये लड़के ने बात तो अच्छी पूछी है, कहां जाएंगे छोड़ के, मुक्ति का ही तो किसी को पता नहीं घर कहाँ है। बाबा मुरलियों में कह रहे हैं, तुम घर से आए, जाने के लिए फिर से प्रयास करते रहे, पता चला नहीं, रास्ता ही नहीं पता, कहाँ है घर ये भी नहीं पता। तो कितना गुह्य ज्ञान दिया है, इसका चिंतन करेंगे व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। स्वमान का अभ्यास करेंगे। अब एक 5 पॉइंट प्रोग्राम लिख लो आप, ज्ञान रोज की मुरली के 2-3 पॉइंट लिखकर दिन में कई बार याद कर लें, इसको चिंतन कहते हैं। चिंतन का अर्थ ये नहीं कि नई पॉइंट आप निकालेंगे, उन्हें याद कर लें। आप देखेंगे एक एक श्रेष्ठ संकल्प कई कई व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देगा। ज्ञान का बल, मैंने बहुत साल से सुनाई है ये बात, क्योंकि ये मेरी अपनी बात है, मैंने ये सब किया है जीवन में। हर साल जब अव्यक्त मुरलियों का, बाबा का अव्यक्त सीजन पूरा होता था, जब से आप आए तब तो यहाँ शांतिवन में ऑफिशियल सीजन चला है, कोई पुराने होंगे आप में से। शुरू में बाबा एक साल में 50 बार आते थे, बहुत बार शुरू के सालों में तो मंडे और गुरुवार आते ही थे, हर हफ्ते 2 बार। हम लोगों से बहुत मिलन होता था, तो मुझे ज्ञान का पहले से शौक बहुत ज्यादा, तो मैं जो सुंदर सुंदर बातें थी, कौन सी सुंदर बातें, जो मन को निसंकल्प कर दे, जो मन को ईश्वरीय नशे में ले जाए, जिसको सुनते ही हमारा योग लग जाए, फर्स्ट क्लास एकाग्रता हो जाए, वो अलग नोट कर लेता था। वो 50-60 पॉइंट हो जाती थी, कभी कभी 100 हो जाती थी, उनको पढ़ते रहे, सारी मुरली रिवाइज हो जाती थी, उससे अनेक व्यर्थ संकल्प समाप्त। देखो कुछ व्यर्थ संकल्प परचिंतन के कारण चलते हैं, कुछ व्यर्थ संकल्प दूसरों के अवगुणों को देखने से चलते हैं। परचिंतन पर मैंने काम किया पहले 3 साल, और मैं सोचता था, पहला संकल्प होता था, क्या तुम भगवान के पास परचिंतन करने आए हो, ये काम करना था तो उधर ही रहते। बहुत प्रेरक संकल्प था मेरे पास, जिसको तुमने युगों से बुलाया था, जब वो आ गया फिर कहां लगे हुए हो। मैं बहुत घूमता था छतों पर, ट्रेनिंग क्लास है ना शांति स्तंभ के ऊपर, वो छत खुली थी, बाबा ने कहा था ये छत तुम्हारे लिए तो बनाई है एकांत के लिए। मुझे ये बात भा गई और मैं बहुत घूमता था कि भगवान आ गया फिर तुम किधर देख रहे हो, मनुष्यों को देखते देखते तो युग बीत गया, उसको देख लो जी भर के जिसे तुम देखना चाहते थे। एकदम चित शांत हो जाता था। ये होमवर्क हम सबको करना चाहिए। तो जो भिन्न भिन्न तरह के हमारे संकल्प चलते हैं, ज्ञान की पॉइंट्स आप रखो अपने पास, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा 25 या 16, उनको पढ़ते रहो, वो आपको अनेक तरह के संकल्पों से मुक्त करेंगे। मान लो भविष्य की आपको चिंता होने लगी, बच्चों की चिंता होने लगी, पढ़ाई नहीं चल रही है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, माताएं कहते हैं हमारे बच्चे तो मोटे हो गए हैं क्योंकि खेलकूद भी नहीं करते बेचारे, और बच्चे भी डिप्रेशन में आ रहे हैं, उनका जीवन तो कुछ और होता है ना बच्चों का, तो उन्हें खेलकूद भी चाहिए, तो पढ़ने स्कूल में जाएंगे, साथियों से मिलेंगे, वो अलग लाइफ होती है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट गहरा होता है इन चीजों का। उन्हें घर में बांध दिया माना जेल हो गई उनको, तो आपको चिंता हो रही है अपने बच्चों के भविष्य की और कुछ भविष्य की, और बाबा की पॉइंट आपने पढ़ ली, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मन शांत हो जाएगा ना। आपने पॉइंट पढ़ ली, तुम्हारा भाग्य मेरे हाथ में है, डोंट वरी, चित शांत हो जाएगा। आपके मन पर कोई बोझ है, आपने बाबा की पॉइंट पढ़ ली, बोझ मुझे दे दो। जो बाप सारे संसार के बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा। आपने पढ़ लिया, ये हल्के हो गए। ऐसी 16 या 25 पॉइंट लिख लो, क्योंकि व्यर्थ संकल्पों का एक बड़ा कारण है मैं और मेरा, मेरे से ही मोह होता है, मेरी जिम्मेदारी, मेरी चिंताएं, ये सब अनेक व्यर्थ संकल्पों को जन्म देते हैं। इसलिए हमारी सूक्ष्म साधना है, एक दिन में पूरी नहीं होती, सालों साल चलाने की साधना है। कौन सी, नोट कर लेना, मेरे को तेरे में बदलना। संपूर्ण समर्पण भाव, सब कुछ तेरा, चिंताएं भी तेरी, तो जिम्मेदारी भी तेरी है, बच्चे भी तेरे, सब बिजनेस, धंधा, घर बार सब तेरे। ये समर्पण भाव बहुत बड़ी चीज है। अब ये ना सोचो आप गृहस्थ में समर्पित कैसे होंगे, ये समर्पण भाव ही सच्ची समर्पणता है। कुछ समर्पित होकर भी अगर कोई समर्पित भाव में ना आया, मेरा मेरा रह गया, तो समर्पित की लिस्ट में नहीं आएंगे। और जो घरों में रहकर सब कुछ तेरा इस फीलिंग में आ गए, वो सच्चे अर्थों में समर्पित कहलाएंगे। और संपूर्ण समर्पणता ही संपूर्णता है। भगवान वाच, संपूर्ण समर्पणता ही संपूर्णता है। तो प्लान बना लें, हमें सबके लिए शुभ भावनाएं रखनी है, हमें अपने स्वमान को बढ़ाना है, पांच स्वरूपों का अभ्यास करना है, देह से न्यारे होने की प्रैक्टिस बहुत करनी है, अनेक संकल्प समाप्त हो जाएंगे। ध्यान देना सभी इन बातों पे, ज्ञान की पॉइंट्स लिखेंगे। पांचों स्वरूपों का अभ्यास, स्वमान का अभ्यास, चित्त शुभ भावनाओं से भरा हुआ, और एक प्रैक्टिस और जिस पे बहुत कम ध्यान ब्राह्मण दे रहे हैं, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति। वृत्ति घर में बैठे हैं, आप संकल्प करें सब आत्माएं हैं, ये संसार आत्माओं का खेल चल रहा है, सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, सबको घर चलना, ये बनाएगी आत्मिक वृत्ति। और ड्रामा की भी 8-10 पॉइंट अपने पास लिख लेना, जिन्हें संकल्प करें अशरीरी होने का अभ्यास, अशरीरीपन, इसके बहुत फायदे हैं। डीप साइलेंस हो जाती है, कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी, प्योरिटी बढ़ने लगेगी। और एक बड़ी चीज जो बड़ी समस्या है इस संसार की आजकल, पास्ट में रहना। जो नई पीढ़ी है और जो ज्ञान में नहीं है, बड़े भी हैं, पास्ट के उनके कर्म उनको बहुत तंग कर रहे हैं। अभी किसी ने उनको सताया है, उनसे कोई बुरा कर्म हो गया, किसी ने उनके साथ बुरा कर्म किया है, सब याद आके उनको नींद खत्म कर रहा है। शरीरीपन के अभ्यास से और पांच स्वरूपों के अभ्यास से बीती हुई बातें स्वतः ही भूल जाएंगी, समा जाएंगी वो। और एक संकल्प रहने लगेगा, हमारे साथ ये सब कुछ हुआ तभी तो भगवान के पास आ गए, नहीं तो कहां से आते। कल एक परिवार आया, बड़े लोग, पति ऑफिसर उसका आपके नजदीक ही, शिवानी बहन की क्लास बहुत सुनता, सेंटर नहीं गए लेकिन कार में आते जाते सुनता। ये माता बिल्कुल रुचि नहीं रखती, अचानक पति की मृत्यु हो गई। ये सब अभी की घटना है, अभी वर्तमान। अभी ये बेचारी बहुत दुखी, बहुत बड़ी चीज होती है ना, किसी का पति चला जाए उसका तो अंधकार नजर आने लगता है। ज्ञान में आ गई, कल आई, पहली बार ये लोग ज्ञान सरोवर में आए, ऊपर रहे, पांडव वन में रहे एक दो दिन के लिए। तो देखो अब ये हो रहा है संसार में, दुख, बुरी घटनाएं सबको बाबा के पास ला रही हैं। मैं एक विधि और आपको सिखाना चाहता हूं जरा, वो ब्राह्मणों में कम प्रचलित है। तो शब्द बाबा हमें सेवाओं के लिए बोलते हैं, मनसा सेवा और वाइब्रेशंस की सर्विस, सर्विस थ्रू वाइब्रेशंस, सर्विस थ्रू माइंड। वाइब्रेशंस तो हम फैलाते हैं विभिन्न तरह से। मैं आपको दो चीज कह रहा हूं, अब वो सब करने लगेंगे तो ये सब ऐसी प्रैक्टिस हैं कि इनको करते रहने से व्यर्थ खुद ही खत्म हो जाता है। हम अच्छे संकल्प क्रिएट करते हैं, बुरे खत्म हो जाते हैं। ये साधनाएं तो सबको करनी है। एक तरीका, मैं फरिश्ता आकाश में हूं, ये थर्ड थर्ड प्रैक्टिस कर लिया करें, 10-10 सेकंड भी फील करें, मैं फरिश्ता आकाश में, मैं ही आकाश में हूं। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, फरिश्ता बन के कैसे जाऊं, हमसे तो बना नहीं जाता, नथिंग, मैं ही आकाश में हूं, पूर्वज हूं, चारों ओर संसार है, देव कुल की करोड़ों आत्माएं हैं। मनसा सेवा का अर्थ है उन्हें सुंदर संकल्प दे दो। तो क्योंकि हम पूर्वज हैं, हम महान आत्माएं हैं, हमारे संकल्प उनके संकल्प बनते जाएंगे, हमारे संकल्प उनके संकल्पों को बदलते जाएंगे। ऊपर होकर संकल्प दें, हे देवकुल की आत्माओं आ जाओ बाबा के पास, वो तुम्हें बुला रहा है, आ जाओ। संकल्प कर दें हमारे चारों ओर जो लोग हैं, अब संसार का न करके अपने से टीके, ये सब भय से मुक्त हो जाएं, इनके विघ्न नष्ट हो जाएं। उनसे बातें करो, जो लोग मरना चाहते हैं उनको सुंदर विचार दो, नहीं, जीवन बहुत मूल्यवान है, तुम्हें अपने को महान बनाना है, तुम सुखी हो जाओगे, आ जाओ बाबा के पास, तो हमारे संकल्प दूसरों तक पहुंचने लगेंगे। वाइब्रेशन देना अलग होता है, शांति के वाइब्रेशंस, शक्तियों के, प्योरिटी के, सुखों के। दूसरा एक अभ्यास करेंगे, जो भी आप अभ्यास कर सकें, इन सब के लिए थोड़ा थोड़ा समय देना, 5-5 मिनट का काम है ये। हमने अपना अंतर्वाहक शरीर धारण कर लिया, इसको भी भारी ना मानना, हम वरिष्ठ हो गए और उड़ के चले गए कहीं। आप अपने किसी रिलेटिव के घर में पहुंच गए, जिनके घर में थोड़े झगड़े हो रहे हैं, जैसे मैं फरिश्ता पहुंच गया वहां, और थोड़े वाइब्रेशंस दे दें, और उन्हें आत्मा देख के सुंदर संकल्प दे दें, तो ये एक बहुत सुंदर सेवा होने लगेगी। किसी को आपको ज्ञान में लाना है, ये प्रयोग कर लें। किसके घर में मृत्यु हो गई है, उन्हें शांति देनी है, बहुत शोकाकुल हो गया परिवार, वहां जाकर अच्छे वाइब्रेशंस फैलाए, उन्हें कुछ संकल्प दे दिए। क्लियर है ना? ये दो चीजें 5-5 मिनट, ज्यादा समय नहीं, सवेरे शाम कभी भी, 6 बजे सवेरे, 5 बजे, ये अभ्यास करने लगे, तो इन अभ्यासों से हमारा पुण्य का खाता बहुत बढ़ जाता है, और इससे हमारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। तो सभी अपनी अपना होमवर्क करेंगे, एक लिस्ट बना सकते हैं आप 10 बातों की, केवल मेरे अंदर व्यर्थ संकल्प किस किस कारण से चलते हैं, भय से, चिंताओं से, ईर्ष्या से, बदले की भावना से, किसने मुझे तंग किया उसके लिए, कोई मेरी इंसल्ट करता उसके लिए, बच्चे मेरी सुनते नहीं है उसके लिए, लिस्ट बनाओ 10 बस, ज्यादा, और एक एक को कैसे समाप्त करना है इसकी खुद पॉइंट लिख लेना। ज्ञान आप सबको है, खुद लिखेंगे तो वो ज्यादा पावरफुल होगा। चिंताएं सता रही हैं कोई, मनुष्य को बहुत चिंता होती है, क्या होगा, आपने एक संकल्प रख लिया, मेरे साथ भगवान है, मेरा भविष्य बहुत सुंदर है, बाबा सब कुछ अच्छा करेगा। एक बार में नहीं होगा काम, लेकिन ये संकल्प करते करते चिंताओं से आत्मा मुक्त होने लगेगी। ऐसे ऐसे भय आपको लग रहा है, और ये भय बहुत बढ़ेगा, सब ध्यान दें इस बात पर कि संसार में भय ही भय हो जाएगा, मौतें इतनी होंगी, भय, मानसिक रोग और भय। अपने को कोई सुंदर संकल्प दे दो, मैं शिव शक्ति हूं, मुझे तो सबको निर्भय बनाना है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, शरीर छोड़ के गई है, डरने की बात नहीं, मेरे साथ भगवान है, मैं उसकी सुरक्षा कवच के अंदर हूं, मेरा कुछ नहीं होगा, निर्भय, निर्भयता आ जाएगी। ऐसा अपना होमवर्क करना, आपको बड़ा मजा आएगा। तो व्यर्थ संकल्प ऐसे भी समाप्त हो जाएंगे। और फिर से याद दिला दूं, लास्ट में, हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है, और सबसे पावरफुल संकल्प है हमारे स्वमान के, जिससे हमारा ब्रेन भी पावरफुल होगा, मन भी पावरफुल होगा, बुद्धि दिव्य होती जाएगी और हमारी स्थिति बहुत श्रेष्ठ होती जाएगी। इसलिए स्वमान अपने अपने चुन लें, 8-10 ज्यादा नहीं, जो आपको बहुत सुंदर लगे उनको स्मृति में लाया करें। एक एक स्वमान का संकल्प आपको पावरफुल एनर्जी देगा, एक एक संकल्प अनेक व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करेगा, और लक्ष्य बना लें सुंदर। मैंने लक्ष्य आपको बताए, और भी आप सुंदर बना लें। मुझे संपूर्ण पावन बन जाना है, मुझे ऐसी स्थिति बनानी है कि अब एंड में मैं संसार के काम आ जाऊं। 84 जन्म बहुत सुख भी भोगे हैं, भक्ति बहुत की, हमने कोई दुख नहीं भोगे ज्यादा, बहुत सुख भोगे हैं, अथाह धन संपदा भी हमारे पास रही है। अब मुझे एकाग्र चित्त होकर बाबा से अनेक शक्तियां और सिद्धियां वरदान ले लेने हैं, ये लक्ष्य, इन्हें लक्ष्य कहते हैं। तो जो लक्ष्य बनाएंगे उस ओर हम चलते हैं, और उसके विपरीत जो बातें वो पीछे छूट जाती हैं। आप ही सुंदर हो जाएगा। तो आप सभी अपने अपने घरों में प्रेम की गंगा बहाएंगे। कैसे प्रेम की गंगा बहाई जाती है? छोटी सी विधि, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, एक दूसरे की प्रशंसा करना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बच्चों ने भी कुछ किया, नंबर लाए, भले ही कम आए, उमंग दिलाओ, बहुत अच्छा, और मेहनत करना अगले साल, और अच्छा हो जाएगा। जब एप्रिसिएशन होता है, समझती है ना माताएं, इंग्लिश शब्द है, प्रशंसा करना दूसरों की, उमंग दिलाना, तो घर में प्यार का माहौल हो जाएगा। इससे आपके घर सुखधाम बन जाएंगे, यही मंदिर बन जाएंगे। और माताओं को मैं एक चीज कहता आया हूं, जिसके रिजल्ट बहुत सुंदर है, मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ। ये बहुत अभ्यास करो, आपका घर मंदिर हो जाएगा, और भाई लोग अभ्यास करेंगे, मैं इस सृष्टि में एक महान आत्मा हूँ। ओम शांति।